أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ؟ اللہ تعالی ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو، اس مدرسے کو، آپ سب کو دیکھ کر. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ملک میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی اہم لگتی ہے. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس وقت کو جو باقی ہے اس کو اس موضوع کے ساتھ دیکھیں کہ جنت کیوں، انسان اور جنت. اور ہمارا آج کا لیکچر ایمان بالغیب سیریز کا حصہ ہے، کیونکہ ہم اندیکھی حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں. دن میں کئی بار ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس موضوع میں کیا رکھا ہے. جنت سب کی خواہش ہے، آپ کا دل کرتا ہے جنت میں جانے کو؟ میرا سوال ہی غلط ہے، یہ پوچھنا چاہیے کتنا دل کرتا ہے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ آج ہم جنت کی باتیں کریں گے، جنت کے مسافر کیسے بننا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج کا ہمارا لیکچر ایمان بالغیب سیریز میں سے ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے. کیسے اندیکھی دنیا پر انسان یقین رکھتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلی دنیا کو تصور میں لاتا ہے. حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد کبھی بھی چین نہ آئے اگر مرنے کے بعد دو چیزوں کی امید نہ ہو، ایک اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اور دوسرا جنت میں داخلہ. ایک ایمان والا ساری زندگی ان دو چیزوں کو اپنی طلب بنا کر کبھی راتوں کو رب کے سامنے جھکتا ہے، کبھی گرمیوں کی دوپہروں میں روزے رکھتا ہے، کبھی حج پہ جاتا ہے، کبھی مال لگتا ہے، کبھی کچھ لگتا ہے. آپ بھی اس وقت کیوں یہاں آئے ہیں؟ آپ کو کیا ملنا تھا ادھر آ کے؟ آپ کے شوہر صبح اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ آج بھی لاکھوں روپے لگا کر ایک عمرہ کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ میں جنت دینا. اب دنیا میں کوئی انسان کوئی بھی اچھا عمل کرے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے اور اسے اس کام کا اچھا بدلہ ملے. یہ خواہش صرف اچھا کام کرنے والے ہی کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان اس حقیقت کو سمجھتا بھی ہے اور اس سے اتفاق کرتا ہے. اور وہ کیا؟ کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی ہی کرنی چاہیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور اسے پھر اچھائی کا بدلہ بھی دینا چاہیے. لیکن آپ اور میں اس دنیا میں کبھی کبھی اس سے مختلف دیکھتے ہیں. سوچئے کسی شخص کو، بہت نیک انسان ہے، کوئی نافرمانی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، لیکن اس کو بظاہر اس کی نیکیوں کا، اس کی عبادات کا، اس کے تقوی کا، اس کے اچھے کاموں کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، یا پھر اتنا نہیں ملتا جتنا اس کا حق ہے. ہے کوئی ایسا ذہن میں؟ بہت سارے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے برادریوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یہ اتنے نیک ہیں، تو پھر ان پہ تکلیف کیوں آئی؟ یہ صرف اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں، پھر ان کو کیوں نہیں ملا؟ ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا. بلکہ بعض دفعہ تو الٹ ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے میں دنیاوی مادی نقصانات ہوتے ہیں. بیسیوں بار آپ دیکھتے ہیں کہ حلال روزی کمانے والا، پانچ وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والا، سچائی اور امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرنے والا بھی کبھی کبھی غربت کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے. کبھی معاشرے کی باتیں سنتا ہے، کبھی لوگوں کے تانے سنتا ہے، اور کبھی کبھی غلط لوگوں کے ہاتھوں نقصان بھی اٹھاتا ہے. یہ آپ کی میری ڈے ٹو ڈے لائف میں اکثر ہوتا ہے. بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ انسانی عقل کہتی ہے होना तो चाहिए था कि ऐसे बंदों के लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएं जो अमानतदार हैं, और हर तरह के वसाइल उनको मिल जाएं, सादतें और रहमतें उन पर बारिश बरसाएं। फिर क्यों इसको कोई मुसीबत और मशक्कत आती है, बल्कि एक जुमला हम अक्सर बोलते हैं, अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है। जो जितना नेक होता है उसको ज़्यादा आजमाइशें होती हैं। तो इसका जवाब एक लाइन में अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क के आगाज़ में दिया, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियाब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, आप और मैं सब कमरे इम्तिहान में। सोच के घबराहट होती, इम्तिहान का लफ्ज़ किसी को अच्छा नहीं लगता, टेस्ट देना किसी को अच्छे नहीं लगते। ये अलग बात है कि टेस्ट होते ही रहते हैं। हम जब छोटे थे तो हम कहते थे जब स्कूल से जान छुटेगी इम्तिहानों से जान छुट जाएगी, टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। पता क्या चला कि बचपन में मैथ, इंग्लिश, उर्दू और इस तरह के मजामीन के टेस्ट थे, बड़े हुए तो शुगर टेस्ट देने पड़े, ब्लड टेस्ट, कहीं एक्सरे हो रहे, कहीं कुछ। बड़ी उम्र में तो हर वक्त ही टेस्ट होते रहते हैं लोगों के। तो क्या पता चला कि ये दुनिया जन्नत नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं दिस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये दुनिया फूलों की सेज नहीं, यहाँ फूलों में भी कांटे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत है, तिर्मिज़ी में आप इसको देख सकते हैं, 2324, अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन आदमी के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत की तरह। अब इसको सुनकर एकदम इंसान परेशान हो जाता है, ये कैसे? तो मैं एक वाक्य सुना देती हूँ। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी एक बहुत बड़े मुहदिस गुजरे, आज भी हदीस की बड़ी बड़ी किताबों की शरूह उन्होंने लिखी हुई है। बहुत साहिबे माल थे, टेस्ट भी अच्छा था, दौलत भी थी। जब इल्म के लिए निकलते थे तो पूरी आराइश के साथ निकलते थे, सवारी भी अच्छी होती थी, ज़िबाइश भी अच्छी थी, यानी लोग उनको देखकर उनसे ज़्यादा दीन की इज्जत करते थे कि वाह, दीन वाले के पास भी इतना कुछ हो सकता है, दीन वाला भी इतना वेल मैनर्ड, एटिकेटेड, खूबसूरत, पहनना ओढ़ा हो सकता है। हमारा मामला पता क्या है, हम दीन को सौतेला बच्चा बनाते हैं। गरीब, ऊपर ऊपर से प्यार करेंगे, अकेले में डांटते हैं। देखिए ना, तसव्वुर है, हर सौतेली माँ ऐसी नहीं होती वैसे। लेकिन एक बात क्या है कि दूसरों के बीच में उसको बहुत प्यार करेगी माँ, ताकि लोग कहें हाय कितनी अच्छी माँ है, हाय कैसे प्यार से रखा हुआ इस बच्चे को। लेकिन अकेले में हो सकता है दिल में वो तलब, वो चाहत ना हो जो अपने बच्चे के लिए होती है। तो आज हमारा दीन के साथ कुछ ऐसा मामला है, हम दीन को गरीब देखना चाहते हैं, मांगने वाला, भिखारी, चंदे वाला, रोता धोता गरीब। हमारे घरों को कोई देखे, और अमूमन हमारी मस्जिद को कोई देख ले, टूटी कुर्सी मस्जिद में रखा हो, भाई इसकी तो एक टांग ही हिल रही है, टूट रही है, कोई नहीं नीचे दो पत्थर रख देना। मैंने एक मस्जिद में, बहुत पहले की बात है, यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं है, एक मस्जिद में गिना था, 18 फ्रिजें रखी हुई थी और एक भी काम नहीं करती होगी, शायद एक कर रही होगी, कोई बाकी नहीं। क्यों? बाहर की दुनिया में तो वैसे ही नखरे बड़े हैं, नया मॉडल आ गया है, पुराना किसको दें, पुराना कौन लेता है, मस्जिद में डाल दो। वो जिसके घर से जो चीज़ उठी मस्जिद में चली गई, कबाड़ खाने की दुकान लगती है मस्जिदें। आज हम दीन के साथ कुछ ऐसे ही हैं। आज दीन वाले खूबसूरत क्यों नहीं लगते हमें? हम दीन के साथ एक अजीब किस्म का मस्नूई खौल चढ़ा कर दीनदारी का पेश करते हैं, फिर कहते हैं फलां कितना नेक है, हाय वो तो कंघी भी नहीं करती, होश ही नहीं उनको, वो देखे दाढ़ी उनकी कैसी बढ़ रही है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे एक शख्स को देखा तो उनकी दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे, तो आपने फरमाया तुम्हें कंघी ना मिली। सफर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी वो किट, जिसको आज की जबान में क्या होती थी, सुरमा, कंगी, मिसवाक, क्यों? दीन खूबसूरत है। इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। आज के दौर में ये भी एक चैलेंज है। बड़े हौसले और जिगरे वाला बंदा ये कर सकता है, वरना नहीं। फुलां जी मस्जिद के इमाम है तो वो तो इतनी महंगी गाड़ी में आए थे। अच्छा जी फुलां वो तो ऐसे हैं, उनका तो घर ही 10 कनाल का है। शक करो, ये पैसा कहाँ से आता है? बेहलाल से आता है, अल्लाह ने दिया है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो याद रखिए, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए पहने ओढ़िए। ना लोगों के लिए पहने और ना छोड़े। तो जो हजरत अस्कलानी थे वो बहुत वेल ड्रेस्ड थे। एक दफा अपनी सवारी पे बड़े शाही अंदाज में सवार गुजरे तो एक बिल्कुल मुफलिस, कलाश, बुरे हाल वाला शख्स दिखा जो गैर मुस्लिम था। उसने इनको रोक लिया, कहने लगा तुम्हारे नबी की बात दुरुस्त नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद है और काफिर के लिए बाग है, जबकि तुम्हें और मुझे देखें तो ये बात गलत है। तुम हो भी मोमिन, मुसलमान भी हो, और तुम्हारे तो टौर ही बड़े हैं। तुम्हारा तो हाल ही बड़ा अच्छा है, और मैं देख लो इस्लाम भी नहीं है फिर भी बड़े ही बुरे हाल में हूँ। अब आप और मैं क्या सोचें उस पर? सोचें बस, परेशान नहीं। अब उनका जवाब सुनिए, ये आज हर उस बंदे को जवाब मैं दूंगी जो तंग नजरी के साथ दीन और दीनदारों को देखेगा। कहने लगे भाई तुम्हें ये जो मेरा हाल हुलिया बड़ा अच्छा लग रहा है ना, इसके मुकाबले में जब मुझे जन्नत के लिबास मिलने हैं और जन्नत की सवारियां मिलनी है ना, तो वहां जाकर उस ठाट बाट के सामने ये मेरा जो हाल है ये ऐसे ही लगना है कैदी का हाल होता है। यानी मुझे इससे बहुत अच्छा मिलना है आगे इंशाल्लाह। और रह गई तेरी बात, तो जो तुझे आज अपना हाल बुरा लग रहा है ना, कल वहां जाकर तुम्हारे साथ जो सलूक होने वाला है अगर तुम कुफर पे मर गए, तो याद रखना वहां जाकर तुझे अपनी दुनिया की जिंदगी ऐसे लगनी है तू किसी बाग में था, क्योंकि वहां तेरा बड़ा बुरा हाल होगा। तो आज इस सोच को सीधा कीजिए। इस्लाम बदतहजीबी नहीं सिखाता, डिसऑर्गेनाइज नहीं है इस्लाम। आज हम हर चीज में एक्सीलेंसी के दर्जे पे पहुंचना चाहते हैं, और दीन, नमाजें, रोजे और इन चीजों को सिर्फ बरा टालने के लिए करते हैं। इवन हम कुरान पढ़ते हैं, किसको कुरान से दिल की मोहब्बत महसूस होती है? किसका दिल कटता है नबी सल्लम की मोहब्बत में? कितना जानते हैं हम उनको? फातिहा से नाज तक हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो खुशकिस्मती है। तो हम बात कर रहे थे जन्नत की। एक मोमिन शख्स को उसके नेक अमाल का असल बदला क्यामत के रोज अल्लाह की तरफ से जन्नत और हमेशा रहने वाली नेमतों की शक्ल में मिलेगा। जन्नत में उसके लिए हर तरह की आसाइश और राहत होगी। अपने लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए, अपने उस्तादों के लिए, भाई बहनों के लिए, कुल उम्मत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाए। और वहाँ हर वो चीज़ होगी जिसकी वो तलब करेगा। क्या दुनिया में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती? क्या अम्मी हर वो सूट ले देती हैं जिस पे नजर होती है? नहीं मिलती। किस किस की ख्वाहिश उसका सेल फोन हो? ये तो आंसू लाने वाला जवाब होगा, वहां मिल जाएगा। जिसकी तलब वलकुम फी हमा तदउन मा तश्तही अनफुसकुम, जिसकी तलब करोगे। और क्या है, अच्छी रहाइश हो, हर एक की ख्वाहिश होती है, अच्छा लिबास, अच्छा रिस्क, जन्नती बीवियां हों, हूरें हों, जवानी, खूबसूरती, सेहत, ताकत। और सबसे बड़ी जन्नत की खूबी पता क्या होगी इन चीजों के नाते से, कि ये जो मिल गया कभी छिनेगा नहीं। होम फीहा खालिदून, हमेशा के लिए होगा। दुनिया में अगर कोई नेमत मिल भी जाए, इवन उम्रे पे चले जाए, तो गिनना शुरू हो जाते हैं, हाय 10 में से 9 दिन रह गए, 8, उल्टी गिनती शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि वो पैकेज हमारा 10 दिन का था। कितनी को जाएंगे दे, कोई नहीं, मतलब रिस्क मिलता है ना, एक रोटी खा ले मजा आ जाएगा, दूसरी सोके, तीसरी सजा, चौथी बहुत ही बड़ा टॉर्चर है। यदि दुनिया में हमारी नेमतें भी बहुत भी हो जाएंगी ना, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो वहां हमेश की, ताकि दुनिया में उसने अल्लाह की खातिर जो इबादत की, जो इताअत की, उसका उसको सही बदला मिले। और मजे की बात बताऊं, जन्नत में कोई इबादत नहीं, ना आपको अम्मी ने कहना उठो नमाज पढ़ो, ना रोजे आएंगे वो भी जून जुलाई के लंबे रोजे, कुछ भी नहीं। अहदीस से पता चलता है कि जन्नती सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करेंगे, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इतना गैर महसूस तरीके से होगा, जैसे अब आप सांस लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और ये रिवायत सही मुस्लिम में 7083 नंबर पे है, सांस लेने में जैसे मशक्कत नहीं, इसी तरह तस्बीह और तहमीद करने में कोई दुश्वारी ना होगी। तो बताइए, क्या उस जन्नत को पाने की ख्वाहिश करनी चाहिए? वफी ज़ालिका फल यतनाफसिल मुतनाफिसुन, रुकावट क्या है? हमें सबको पता जन्नत, उलामा इकबाल ने कहा था ना कि जानता हूँ सवाबे जोहत लेकिन तबीयत उधर नहीं आती, हमारी तबीयत अब दीन की तरफ नहीं आती, दिल नहीं करता, बोझ है। इसकी बहुत बड़ी वजह इंसानी ख्वाहिशात है, फिर भी अल्लाह का फजल है उस पर। आप देखिए कि वैसे तो हर इंसान अपने मिजाज और जौक के मुताबिक हजारों ख्वाहिशें रखता है, लेकिन अगर उंगलियों पे गिने हम, आप भी गिने मैं भी गिनती हूँ, तो बुनियादी तौर पर इंसान की चार ख्वाहिशें होती हैं। उर्दू में हम क्या कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और शादी। घर, रिस्क के वसाइल, जिनसी ख्वाहिशात, और फिर इन सब से फायदा पाने के लिए सेहत वाली लंबी उम्र। बाकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, वो इन चार ख्वाहिशों के गिर्द घूमती हैं। तो सवाल लिखिए, क्या दुनिया में तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं? नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले, नहीं पूरी होती। हाँ, कयामत के बाद जन्नत में जाने वाले मर्दों और औरतों, उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। और आप मुझसे, माशाल्लाह आप स्टूडेंट्स बैठी हैं बच्चियाँ, कुरान की कोई ऐसी आयत बता सकते हैं जिसमें ये चारों चीज़ें मजकूर हों? यानी कुरान की वो कौन सी आयत है जिसमें इंसान की चार बुनियादी ख्वाहिशात का जन्नत के नाते से तذکرہ? कोई हाथ खड़ा करे। बिस्मिल्लाह, बहुत मशहूर आयत है, ये भी बता दूं, दूर नहीं जाना पड़ता, करीब की आयत है। और क्या बताऊं? तो फिर ख्वाहिश पैदा कैसे होगी? देखिए ना, हिफ सिर्फ सीने में क्यों है? कुरान सिर्फ रहल पे क्यों पड़ा है? हम चलते फिरते क्यों नहीं बोलते कुरान के लफ्ज़? हमारी आपस में हंसी मजाक कुरान के अंदाज में क्यों नहीं? तो आज आप सब बच्चों को मैं कहूंगी, दुआ करें अल्लाह हमें ऐसा कुरान पढ़ने को मिले कि जिसके बाद हम कुरान का भी और अल्लाह का मिजाज समझें। तो आयत है वो जी बड़ी आसान, सूरत बकरा आयत 25। अब तो याद आ गई होगी, पहली दफा जिक्र है कुरान में जन्नत का। वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाकर अमल सालेह करते हैं। किस बात की? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा लनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिन कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वो उतूबिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़्वाजुम मुतहरा वहुम फीहा खालिदून। आगे चारों चीज़ें, तर्जमा तो आप सबको ही आता होगा ना, क्या तर्जुमा है? और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की बशारत दे दीजिए, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल रिस्क लाए जाएंगे, तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और इनके लिए बीवियां हैं पाक साफ, और इनके लिए जन्नतों में हमेशगी है, वहां के फल अजीब नहीं होंगे, क्योंकि बंदा नई चीज नहीं खाता। हमारे फ्रूट्स जो पाकिस्तान के हैं ना, हम सिर्फ वही खाएंगे। कुछ साल पहले मौका मिला, हम उधर गए थे सिंगापुर मलेशिया, तो वहाँ बिल्कुल रंग बिरंगे फल थे, थाई फ्रूट्स कहते हैं उनको। अच्छा वो लेके आ गई ना काट के आपको खिलाने हैं, तो मुझे घबराहट हो, फिर वो खाएं फिर वो कहीं खाएं, जब उनको खाता देखा तो मैंने चखा तो बहुत मजे के थे। अल्लाह जन्नत में इतनी भी तकलीफ नहीं देगा हमें कि नई चीज टेस्ट करो। अब आप देखिए कि शायद में जन्नतियों की रिहाइश के लिए जन्नत का, रिस्क के लिए फलों का, जिनसी ख्वाहिशात के लिए जन्नती बीवियों का जिक्र है, और आखिर में खुशखबरी दे दी कि वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो जन्नत बहुत करीब है आपके मेरे, बिल्कुल हाथ बढ़ा के ले लीजिए। शर्त एक है, एक पाँव ख्वाहिश नफ्स पे रखिए, दूसरा पाँव जन्नत में होगा। किसी ने कहा जन्नत कितनी दूर है, कहने लगे 2 कदम, पहला कदम ख्वाहिश नफ्स पे डालो तो दूसरा जन्नत में होगा। इसी तरह इस आयत में एक दूसरी चीज क्या बयान की गई कि इस जन्नत में इंसान को मेवाजात मिलेंगे, जाहरी तौर पर वो दुनिया के फलों की तरह होंगे ताकि लोगों को जनबी ना महसूस हो। वैसे आप देखिए किसी ने केला ना खाया हो, संतरा ना खाया हो, उसके हाथ में दे दे, बोल तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि खाना कैसे है। फिर ये भी डर होता है कि पता नहीं कड़वाई ना हो सकता है वो छिलके समेत खाना शुरू कर दे, बाद में शर्मिंदगी हो। तो अल्लाह ने जन्नत के फलों को जायकों के अलावा उनके रंग और टेस्ट की भी बात कर दी। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी सल्लम के चचा थे, उनसे एक रिवायत आती है, और वो रिवायत किधर है, सिलसिलतु सही है, यानी मोस्ट ऑथेंटिक रिवायत आज के दौर में 2188। और वो रिवायत क्या है, लई सफिल जन्नति शयुन यश बहु मा फि दुनिया इल्लल अस्मा। जन्नत की चीजें दुनिया की चीजों के साथ सिर्फ नामों की हद तक तशबीह रखती हैं, यानी ये मुशाबहत सिर्फ नामों की है, मुराद ये है कि उनका टेस्ट, उनका स्टैंडर्ड और उनके अंदर जो लज्जत है, वो उसका दुनिया में तसव्वुर नहीं। आप कह ले नाम का वो केला होगा, लेकिन वो केला ऐसा केला होगा जो आपने कभी नहीं खाया। दुनिया के फलों और आखिरत के फलों में कोई बीच में आप कह सकते हैं कि बात बनती नहीं है। आज भी देखिए कुछ गले सड़े केले होते हैं, वो बेचारे गरीब गुरबा खा लेते हैं, कुछ दरमियाने से होते वो हम जैसे लोग खा लेते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो पता नहीं बड़े लोग खाते होंगे, जिनको लोग बड़े लोग कहते हैं मला। लेकिन आइए थोड़ा सा जन्नत की नेमतों को सोचते हैं, किस नियत से कि शौक पैदा हो। और आप सब माओ को कहूंगी मत बच्चों को डराएं, बच्चों को नहीं डराते, उनको ये नहीं कहते अल्लाह मारेगा, अल्लाह जहन्नम में डालेगा, उन मासूमों को क्यों डालेगा अल्लाह। बच्चों को हमेशा जन्नत के ख्वाब दिखाइए, और टीचर्स को भी मैं यही कहूंगी, हमारे यहाँ दीन के टीचर के साथ ही एकदम सख्ती, खुश्की, डांट, जी हिफ्स डंडे के बगैर नहीं होता, गलत बात है। आप देखिए कि दुनिया के स्कूलों में बच्चों को कितना प्रोटोकॉल मिले, और दीन के तालिब इल्म को हम बिल्कुल पीछे डाल दें, ये अच्छा नहीं है। तो जन्नत और उसकी नेमतों को नंबर एक बात याद रखिए, हम उसका पूरा इदराक कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखों से ओझल है। हाँ कुरान और हदीस में कुछ कुछ बातें हैं जिससे पता चलता है कि वो नेमतें बहुत प्यारी होंगी। और एक हदीस जो आप सबने मेरा ख्याल है बीसियों बार सुनी होगी, बीसियों नहीं शायद इससे भी ज्यादा, और वो हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कालल्लाहु अज़्ज़ा वजल, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, जिस हदीस में ये लफ्ज आ जाए तो हदीस कुदसी है, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. سورة سجدہ کی آیت 17. رات کو آپ سورت پڑھتے ہوں گے, بچیاں تو ضروری پڑھتی ہوں گی ماشاء اللہ. ہمارے پاس بھی جوہر آباد میں ہاسٹل ہے, مجھے پتہ نہیں ادھر ہاسٹل ہے کہ نہیں ہے, تو اگر نہیں کرتے تو چلے آج کے اس درس کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پہ روٹین بنا لے کہ سونے سے پہلے سب بچیوں نے جو بھی یہاں ہوتے ہیں سورت ملک اور سورت سجدہ پڑھنی ہے, پڑھیں گے. اور جمعے کو سورت القام, یہ تینوں چیزیں ہم لوگ اپنے مدرسوں میں پڑھواتے ہیں, بہت فرق پڑتا ہے اس سے. سنت عمل تھوڑا بھی ہوگا نا تو اس میں برکت بہت ہے. تو حدیث کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں تصور پیدا ہوا ہے. اور اگر چاہو تو پڑھ لو فلا تعلم نفس, یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے سامان پوشیدہ رکھا ہے. سوال کیجئے خود سے, اللہ نے جنت کیوں چھپا کے رکھی ہے, سوچیں. اور یہ جو روایت ہے نا اس کا نمبر نوٹ پہلے کر لیں, بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سوال میرا کیا تھا, کتنا اچھا ہوتا شیشے کا سامان ہوتا, پھر اوپر آنکھیں کھولتے پھر فٹافٹ جنت کی نعمتیں دیکھ لیتے, کہیں نہ کہیں درختوں پہ جنت کی کوئی تصویریں لگی ہوتی, کیوں چھپائی اللہ نے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. اللہ کہتے ہیں بن دیکھے ایمان لاؤ. اور دوسری بات پتہ کیا ہے, اگر جنت دکھتی واللہ ہی کوئی گناہ نہ کرتا اور کوئی نیکی نہ چھوڑتا, پھر دنیا بالکل مختلف دنیا ہوتی. کبھی کبھی ونس بلو مون کچھ جھوٹ بول لیتا, فوراً پریشان ہوتا تو خو میں نے کیا کر دیا, ہائے اتنی پیاری جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور جہنم کے شعلے دکھتے تو بندہ کبھی جھوٹ نہ بولتا. وہ بھی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو دیکھ کر آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے اور جہنم بڑی وحشت ناک, کہا کہ اب ان کے رستے دکھائیے. دیکھا تو جنت کا رستہ مشکلات والا, خفت الجنت بالمکاره, اور جہنم کا رستہ بڑا خوبصورت تلکن رستہ, سلپری گلت. کیا جہنم میں بندہ ایسے پھسل کے پہنچ جاتا ہے؟ بہت پیارا. خفت النار بالشہوات, خواہشات, مزے کرو, موج کرو, لسٹ, جو سب کرتے ہیں تم بھی کرو. وہ میری فلاں دوست نہیں یہ کرتی, میں کیوں نہ کروں؟ آپ ماما بہت سختی کرتی ہیں, باقیوں کو دیکھ لیجئے, یہ وہ. کہا جہنم کا رستہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پہلے جنت اور جہنم دکھوائی, پوچھے اے جبرائیل کتنے کو لوگ اس میں آئیں گے؟ کہا اللہ تیری ذات کی قسم اگر لوگ جنت کو جان جائیں سب آ جائیں گے, اور جہنم میں ایک بھی نہیں آئے گا اگر ان کو پتہ لگ جائے. اور رہ گئی بات رستے, فرمایا اب تو لگتا ہے کوئی جنت میں نہیں آئے گا اور سب جہنم میں چلے جائیں گے. ہم سب کو فکر لگنی چاہیے اپنی. سوال لکھیے, جنت ہے کیا؟ عربی زبان میں جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے اور سایہ دار درخت اتنی کثرت سے ہوں کہ باغ کی زمین چھپ جائے. جنہ یا جنو جنین, جنت چھپنے کو کہتے ہیں. یہ جو ماں کے پیٹ کا بچہ جنین ہوتا ہے نا, اور یہ جن آپ کو تو پتا ہوگا ماشاء اللہ. بس ایک چھوٹی سی چیز مجھے لگ رہی ہے, کیا بچیوں کے ہاتھوں میں کاغذ قلم کیوں نہیں؟ یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور کاغذ قلم نہ. یہ دیکھیے فرت آنٹی لکھ رہی ہیں, حالانکہ اب یہ اسٹوڈنٹس کے سر پہ ایک وارڈن ہے, لکھا کریں. یہ باتیں سننے کی نہیں ہوتی, لکھیں. اور اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہمیشہ قلم اچھا لگتا ہے. तो जन्ना या जनो, जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छुपा होता है। तो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए जो जन्नत बनाई है, क्यों वो जन्नत है? छुपी हुई, इसलिए कि उसके बागात हैं। इस तरह जन्नत में सोने चांदी के बने हुए महलात होंगे, कीमती मोतियों से बने हुए खेमों के अलावा बहुत बड़े बड़े बागात भी होंगे, जिनमें हर तरह का खुशबूदार फलदार पौधा होगा। आप पता है कि जन्नत के पौधों के जो तने हैं ना, तना स्टेम, वो सोने का होगा। आज क्या रेट है सोने का? एक ही जवाब मिलेगा, महंगा बहुत है, पता नहीं कितना। हमारी अब कीमतें खरीद से ऊपर हो गया है। 1 ग्राम कितने का, 1 तोला कितने का है? तो जरा दरख्त के आप तने देखिए सोने के। फिर इन दरख्तों के बीच में से नहरें निकलती हैं, और ऐसे ऐसे हसीन मनाजर होंगे कि बाजौक लोगों ने दुनिया में ऐसे मनाजिर कभी ना देखे हों। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जहनों में इसका कोई तस्वुर भी नहीं होगा। इसके साथ ही जन्नत में नहरें भी होंगी और चश्मे भी होंगे। आप में से कोई गया पहाड़ी इलाकों में? सवात, कागान, ईशू, सोचिए। जन्नत की नहरों और चश्मों का कुरान में बहुत तज़किरा है। सूरत मोहम्मद की आयत 15 में आता है, मसलुल जन्नत इल्लती वुईदल मुत्तकून फीहा अनहारु मिन माइन गैरी आसिन वनहारु मिन लबनिन लम यतगैयर तामुहु वनहारु मिन खमरिन लज्जतिल लिश्शारिबीन वनहारु मिन असली मुसफ्फा वलहुम फीहा मिन कुल्लि समराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुआ खालिदुम फिन्नार व सुकूमान हमीमन फ़क़त्ता अहम। कितने लोग हैं जिनको ये आयत तर्जमे के बगैर समझ आ गई है? हाथ खड़े करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें। आज आप सब ने एक दुआ करनी है, मुझे सब कुछ समझ आए, ग्रामर, तजवीद, हदीसें, मेरी लुगत ठीक हो जाए, लेकिन इन सब से बढ़कर मुझे कुरान उर्दू में समझ आए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा। फिर ही तो रुकेंगे ना गलत चीज़ों से। अब तर्जुमा सुनिए और देखिए कि जिसको अरबी नहीं आती समझ उर्दू में, तो उर्दू के बगैर समझ नहीं आती, वो कितना मिस करता है। अल्लाह ने आपको माशाल्लाह मौके दिए, कई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह हजर उम्रे पे ले जाए, मगरिब, ईशा और फजर। तो अब देखिए कि सबसे खूबसूरती दीन की क्या है, और ये मैं आप बच्चियों के लिए कह रही हूँ जो माशाल्लाह अपनी जिंदगियां वक्फ किए बैठी हैं इधर। इससे ठंडी छांव कोई नहीं है। आपको शायद कभी गुस्सा आता होगा आपके माँ बाप ने आपको क्यों मदरसे में डाल दिया। हमारी दोस्तें तो बस जाती हैं स्कूल में, दो थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के आती हैं, लेकिन यकीन करिए रब्बना तीना फि दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाब। अगर आपको दीन और दुनिया का इल्म इकट्ठा मिल जाए, इससे प्यारी कोई चीज़ नहीं। हमेशा अपने उस्तादों के शुक्र गुजार रहा करें, अपने माँ बाप के मशकूर हों जो आप पे वक्त, पैसा और मेहनत करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि इस वक्त दुनिया बहुत फितनों में है। आप तो बहुत चीज़ों से बचे हुए हैं, आपके पास तो सेलफोन ही नहीं है। है किसी के पास सेलफोन? बल्कि पूरे हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, किस किस के पास अपना फोन है? यहाँ नहीं, वैसे ही है। क्या खूबसूरत कौम है, एक हाथ नहीं खड़ा। तो जब वो फोन नहीं तो मौजे ही मौजे, मजे ही मजे। क्योंकि जब बंदे के ऊपर दुनिया खुलती है ना, तो ख्वाहिशों के दरवाजे खुलते हैं। चलिए अब इसका तर्जमा सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं। पानी कहीं खड़ा रहे ना तो स्टेगनेंट हो जाता है, बू आती है उसमें। जन्नत के पानी में स्मेल नहीं होगी। कुछ देर आप पानी एक ग्लास में या बॉटल में या बाल्टी में छोड़ देना, 15-20 दिन ना छेड़ें, तो उसमें नीचे चिकनाहट आ जाती है, ऐसे ही जैसे जेल बन जाता है। और दूसरी चीज दूध की नहरें जिनका मजा नहीं बदला। आप भैंस से दूध निकालें और बाहर छोड़ दें, कुछ ना करें, ना उबालें, ना उसको ढकें, शाम तक देखिए उसमें खट्टी स्मेल आ जाएगी। जन्नत की नहरों का मजा नहीं बदला। और शराब की नहरें, शराब क्या है? मशरूब, पीने वाली चीज, जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है। दुनिया की शराब वाली नहीं बात, गंदी नहीं, पाक, शराबन तहूरा। और चौथी चीज शहद की नहरें। कितना महंगा है शहद, किसी को कीमत पता? काफी महंगा होगा। जब बाकी चीजें महंगी होगी तो शहद की मक्खियों ने भी रेट बढ़ा दिया होगा। आप देखिए वो हमसे कुछ नहीं लेती, खुद ही फूलों में से रस लेती हैं और मेहनत करके आती, वहां से हम तक पहुंचने में वो कितना भी महंगा होता है। शहद की मक्खी आपको फ्री देती है, क्यों? मेहनत करती है। ये जो इल्म का सफर है ना, ये शहद की मक्खी का सफर है। सूरह नहल में कुरान बताता है, एक मक्खी अपनी जिंदगी में 50,000 किलोमीटर का सफर करती, कितने फूलों से रस लेती है। इल्म भी ऐसे ही होता है, गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, कहाँ कहाँ से बंदा इल्म लेता है, फिर लोगों को नफा देने के काबिल होता है। जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। और फरमाया, इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं और इनके रब की तरफ से मगफरत है। अल्लाह ने ये सारा कहकर आगे एक सवाल दिया आपको, मुझे, आपने भी आयत सुनी है ना, क्या कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, क्या ये उसके बराबर हो सकता है जो हमेशा के लिए आग में रहने वाला, और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो इनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा? जवाब दीजिए, नहीं। ये दो मुख्तलिफ इंजाम है, ये दो मुख्तलिफ किरदार हैं। जन्नत के लिए दुनिया में मेहनत कीजिए और जहन्नम से बचने के लिए मेहनत करें। जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। ऊपर गाड़ी चलाना, पहाड़ी पे ले जाना मुश्किल है, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं आप, मुश्किल लगता है, सांस फूलता है। नीचे जाना बहुत आसान है। तो आपको मुझे अगर जन्नत चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत नहीं करते धड़ाम से खुद ही नीचे गिरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीहानु व जीहानु वल फुरातु व नीलु कुल्लुम मिन अनहारिल जन्ना। ये चार नाम है चार नहरों के, सीहान, जीहान, फरात और नील, ये तमाम जन्नत की नहरें हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो क्या पता चला कि जन्नत है और उसके अंदर ये सारी नेमतें मौजूद हैं। इतनी नेमतें काफी हैं या कुछ और भी सुननी है? जन्नत की नेमतें, इस सारा कुछ सुनकर दिल क्या करता है? इस दुनिया में दिल नहीं लगता, सहाबे कराम का दिल नहीं लगता था इस दुनिया में, इसलिए शौक था शहादत का। देखिए ना, जो इस दुनिया में मुश्किल हालात में हो तो वो क्या कहता है, चलो किसी तरह जन्नत में पहुंच जाओ, लेकिन जो यहाँ ही जन्नत में ना के बैठा हो उसका किधर दिल करेगा? नहीं दिल करता। इसलिए हम सबको ख्वाहिश रखनी है इस बात की कि मेरे मालिक तू मेरे लिए जन्नत को आसान कर दे, हम जन्नत में अल्लाह की नेमतों को पाएं और उससे रहें राजी। नेमतें तो जन्नत की बहुत है, इंशाल्लाह इसी का पार्ट 2 हम करेंगे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। तो जजाकल्लाह खैर इस मस्जिद, इस मदरसे वालों का, जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने इख्तमाम किया। अल्लाह ताला सबसे कबूल करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। जजाकुमुल्लाह खैर।